हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यहाँ हजारों कहानियाँ हैं आपके लिए। अब जैसे ही सिद्धार्थ खुराना ने अपने असिस्टेंट देव की बात सुनी, उसका चेहरा एकदम ही लाल हो गया था और वो कोल्ड वॉइस में बोला, वो तो दादी यहीं सपना देख रही है, लेकिन उनका ये सपना सपना ही रहेगा। फिलहाल के लिए उसने फोन रख दिया था। फोन की स्क्रीन को कुछ देर घूरता हुआ वो कहीं खो गया था। उसके बाद आकांक्षा, जो कि सिद्धार्थ खुराना के हैंडसम के चेहरे को ही देख रही थी, बार बार सिद्धार्थ खुराना का हैंडसम सा चेहरा आकांक्षा के दिल की धड़कन को बढ़ा रहा था। उसका धड़कता हुआ दिल कितने लंबे समय तक शांत नहीं हो सका, क्योंकि यहाँ आने से पहले उसकी माँ ने उसे साफ साफ बता दिया था कि वो अच्छी तरह से अपना अच्छा फेस सिद्धार्थ को दिखाए, उसे अपनी तरफ आकर्षित करे, तो इसीलिए उसे उसके शब्द याद आ गए थे। वेल, तब उसने सिद्धार्थ की ओर देखकर कहा कि मैं तो बस इसी बात से खुश हूँ कि आप बिल्कुल ठीक हैं, मिस्टर सिद्धार्थ खुराना, और मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए, आकांक्षा ने एक मासूम सी लड़की बनते हुए कहा था। उसके बाद आकांक्षा बोली, एक्चुअली मेरी दूसरों की मदद करने की बहुत ज्यादा हॉबी है। मुझे तभी सुकून मिलता है जब मैं दूसरों की मदद करती हूँ। वेल, अभी आकांक्षा अपनी तारीफ कर ही रही थी कि तभी वेटर ने दरवाज़ा खटखटाया और खाना परोसना शुरू कर दिया था। और तक अब जब आकांक्षा ने एक और अपना अच्छा काम सिद्धार्थ खुराना के सामने गिनाया, तो सिद्धार्थ कुछ देर उसकी ओर देखता रहा। फिर अचानक ही सिद्धार्थ को इस बात का एहसास हुआ कि सामने खड़ी हुई लड़की कोई आम लड़की तो बिल्कुल भी नहीं है। भले ही वो कितना ही अच्छा बनने का दिखावा कर रही थी, लेकिन उसकी आंखों में मक्कारी साफ दिखाई दे रही थी। तब अचानक सिद्धार्थ को अचानक से देव के शब्द याद आ गए कि दादी चाहती है कि आप उस लड़की से शादी कर लो। तब उसने अचानक आकांक्षा की ओर देखकर कहा, अच्छा, क्या आप मेरी एक काम में मदद कर सकती हो? क्या तुम मेरी गर्लफ्रेंड बनने का नाटक कर सकती हो? अब जैसे ही अचानक सिद्धार्थ ने ये कहा, आकांक्षा को तो दिल जोरों से धड़कने लगा था और उसे अचानक से बहुत ज्यादा खुशी हुई थी। उसे ऐसा लग रहा था मानो कि उसकी मम्मी ने जो कुछ उसे समझाया था वो खेल काम कर गया हो। जो वो स्टाइलिश बनकर आई थी, वाकई सिद्धार्थ को वो सर पसंद आ गई हो। उसका सफ़ेद हाथ उस वक्त उसकी बात सुनकर थर थर कांप रहा था और कुछ सेकंड के बाद उसने परेशान होकर सिद्धार्थ की ओर देखकर कहा, मिस्टर खुराना, आखिरकार आप कहना क्या चाहते हैं? तद सिद्धार्थ बोला, एक्चुअली मेरे परिवार ने मेरी शादी तय कर दी है और मैं इस शादी से खुश नहीं हूँ, इसीलिए मैं चाहता हूँ कि तुम मेरी गर्लफ्रेंड बनने का नाटक करो। एक बार जब ये हो जाए तो तुम अपनी कीमत बता सकती हो और मैं तुम्हें इस काम की मुंह मांगी कीमत दूंगा। अब तो आकांक्षा का दिल जोरों से उछलने लगा था और वो उसने फिर बोला भी था, लेकिन मैं ही क्यों? तब सिद्धार्थ ने उसे बिना एक्सप्रेशन के बोला, तुम चाहो तो मना भी कर सकती हो, क्योंकि मेरे पास और भी लड़कियां हैं, मैं किसी से भी बात कर सकता हूँ। लेकिन आकांक्षा में तो सब्र नाम की कोई चीज ही नहीं थी। वो तुरंत बोली, नहीं नहीं मिस्टर खुराना, भला मैं आपको मना कैसे कर सकती हूँ? वैसे भी उसने तो मिस्टर सिद्धार्थ खुराना की बीवी बनने का सपना देखा था और अब उसकी गर्लफ्रेंड बनने का मौका मिल रहा था, तो भला इसे वो हाथ से कैसे जाने दे सकती थी। तो उसने तुरंत ही कहा, ठीक है, मुझे आपका ये प्रस्ताव स्वीकार है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब जैसे ही आकांक्षा ने ये कहा, सिद्धार्थ ने एक हल्की सी स्माइल उसे दे दिया। हालांकि आकांक्षा को इस बात के बारे में बिल्कुल भी एहसास नहीं था। उसने सिद्धार्थ खुराना का प्रपोजल एक्सेप्ट करने के बाद इस बात पर मोहर लगा दी थी कि वो भी बाकी लड़कियों के जैसी ही थी, जो खुद को सिद्धार्थ के सामने फेंक दिया करती थी। वेल, उसे अभी भी इस बात का शक था कि या तो ये कोई संयोग है या फिर किसी ने बड़े ही सोच समझकर ही साजिश रची थी और उसने उसे बचाया। वेल, तब सिद्धार्थ खुराना ने सोचा कि अगर वो उसे गर्लफ्रेंड बनाने के बहाने अपने पास रखता है तो अपने दुश्मनों के बारे में भी पता लगा लेगा कि आखिरकार किसने उस पर हमला करवाया था और इस लड़की ने उसे क्यों बचाया। वहीं दूसरी ओर खुराना विला में लिविंग रूम में झलक आराम से बैठी हुई थी। अब आगे और वो सिद्धार्थ की दादी यानी के उर्वशी की ओर देखकर हिचकिचाहट से बोली, मैडम मुझे देर हो रही है, प्लीज आप मुझे जाने दीजिए, मुझे अपने पिता के लिए अस्पताल में खाना लेकर भी जाना है। फ्लैशबैक, जब झलक उर्वशी जी के ऊपर इल्ज़ाम लगा रही थी तब उर्वशी जी बदले में उसे सिर्फ मुस्कुराकर देख रही थी और उसके बाद उसने देव को वहां से जाने के लिए कह दिया था। देव जल्द ही एक नज़र झलक की ओर डालता हुआ मुंह बनाते हुए सीधा वहां से बाहर निकल गया था और फिर उर्वशी ने झलक का हाथ पकड़कर उसे कहा, मैं जानती हूँ कि तुम्हें ये सारी बातें बड़ी ही अजीब लग रही होगी, लेकिन तुम मुझे अपनी बात समझाने का एक मौका दो। मैं चाहती हूँ कि तुम मेरे साथ खुराना मैंशन में चलो, उसके बाद तुम्हें मैं तुम्हारे सारे सवालों के जवाब दूंगी कि मैंने ऐसा क्यों किया। अब जैसे ही उर्वशी जी ने ये सॉफ्ट वॉइस में कहा, अब झलक मजबूर हो गई थी। वैसे भी उर्वशी जी ने झलक की उस हालत का जायजा लिया था और उसका सर सहलाते हुए शांत स्वर में बोली, तुम ऐसी हालत में अगर अपनी माँ, भाई और पिता के सामने जाओगी तो उन्हें कैसा लगेगा? क्योंकि इस वक्त झलक की हालत काफी खराब थी। उसके गले पर, उसके होंठ पर, इतना ही नहीं उसके चेहरे तक पर निशान थे, साथ ही साथ उसके होठों के पास से भी खून निकल रहा था। उसका पूरा शरीर बेहद बीमार सा लग रहा था। साफ साफ उसे देखकर पता चल रहा था कि उसके साथ जबरदस्ती हुई है। अब झलक को भी एक पल के लिए उर्वशी जी की बात ठीक लगी थी और उनकी बात मानकर वो खुराना मैंशन में आ गई थी और फिर दो चार घंटे आराम करने के बाद वो वहां से जाने के लिए इजाज़त मांगने लगी। उर्वशी जी ने बड़े ही सपाट शब्दों में झलक से कहना शुरू कर दिया था, तुम्हें अपने पिता की फिक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि मैंने ऑलरेडी बड़े बड़े डॉक्टर को उसका इलाज के लिए लगा दिया है, साथ ही साथ उनके देखभाल करने के लिए भी किसी को भेज दिया है। अब जैसे ही झलक ने ये सुना उसने अपनी वॉइस थोड़ी लाउड की और चिंता भरी आवाज में बोली, लेकिन मैडम आप बिना मेरी परमिशन के मेरा माता पिता को कहाँ लेकर गई है? क्या आप मुझे ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रही है? तब उर्वशी जी ने उसकी ओर देखकर कहा, तुम हमारे बारे में क्या सोच रही हो झलक और क्या बोल रही हो? यकीन मानो मुझे बिल्कुल भी गुस्सा नहीं आ रहा है। वो बड़ी ही विनर्म आवाज में उससे बात कर रही थी। तब झलक के सवाल पर उर्वशी झलक की ओर देखकर बोलती है, बेटी मैं जानती हूँ कि तुम्हारे साथ जो कुछ हुआ बहुत गलत हुआ, लेकिन मैं नहीं चाहती कि तुम ऐसी हालत में अपने परिवार के सामने जाओ और वैसे भी मैंने तुम्हारे पिता को अपने बेस्ट हॉस्पिटल में एडमिट कराया है जहाँ मैंने 24 घंटे के लिए अपने एक आदमी को तुम्हारे पिता की सेवादारी के लिए नियुक्त कर दिया है और साथ ही साथ तुम्हारे भाई और तुम्हारी माँ के लिए भी मैंने कुछ आदमियों को भेज दिया है जो उनका बेहद ख्याल रखेंगे और साथ ही साथ उन्हें बता देंगे कि तुम एक इम्पोर्टेंट काम के लिए 3 दिनों तक उनके पास नहीं जा पाओगी, तो तुम 3 दिनों तक मेरे साथ ही रहोगी। अब जैसे ही मैसेज उर्वशी खुराना ने ये बताया, अब तो झलक की हैरानी बढ़ चुकी थी कि अचानक से इस बूढ़ी औरत को क्या हुआ है, वो इस तरह से उसे यहाँ अपने साथ खुराना मैंशन में क्यों रखना चाहती है जबकि उसका वहाँ रुकने का कोई इरादा नहीं था, भले ही उर्वशी ने झलक के पिता को अगवा करने की बात नहीं की थी,
लेकिन उसका सीधे सीधे तरीके से यही मतलब था, बिना झलक की परमिशन के वो उसके पिता को किसी और अस्पताल में कैसे एडमिट करवा सकती थी। इसका मतलब साफ था कि उर्वशी बड़े ही विनम्र शब्दों में उसे ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रही थीं। झलक के दिल कर रहा था कि वो अभी और इसी वक्त मैसेज उर्वशी को खरी खोटी सुनाए और यहाँ से चली जाए, लेकिन उर्वशी जी ने उसे एक बार भी उल्टी कोई बात नहीं की थी, वो उसे बड़े ही प्यार से उसके साथ पेश आ रही थीं।